ओम शांति। योगेश्वर शिव बाबा ने स्वयं आकर हम सभी को ये राजयोग सिखाया, जिस राजयोग के द्वारा बाबा इस संसार में देवी स्वराज की स्थापना करते हैं और हम सभी को राजाई करने की ट्रेनिंग भी देते हैं। ये राजयोग एक ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य एक साधारण लेवल से उठकर इतने ऊंचे लेवल तक पहुंच सकता है कि वो इस सारे संसार को कंट्रोल कर सके, वो इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक बन सके। इस योग के द्वारा हमारे संस्कार डिवाइन हो जाते हैं, प्योरिटी बढ़ जाती है, संस्कारों में सरलता आ जाती है, महानता और रॉयल्टी आ जाती है, हमारे विचार भी बदलने लगते हैं। इस राजयोग के अभ्यास से हम स्वयं को सर्वशक्तिवान के बहुत समीप अनुभव करते हैं। उससे योग लगाते ही हमें ऐसा आभास होने लगता है कि मानो उससे हमारा मिलन हो गया हो। इस योग अभ्यास के द्वारा हमारी आंतरिक शक्तियों में बहुत विकास होता है। जैसा कि लोग मानते हैं कि मनुष्य के अंतर चित्त में अनेक शक्तियां अंतर्निहित हैं, योग के द्वारा उनको जागृत कर दिया जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल मनुष्य के चित्त की वो शक्तियां जैसे कि सुसुप्त अवस्था में होती हैं, लेकिन एक योगी अपने चिंतन और योग अभ्यास के द्वारा उनको जागृत कर लेता है और इससे उस मनुष्य के अंदर शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। योग से हमारे जन्म जन्म के विकर्म भी नष्ट हो जाते हैं। विकर्मों को नष्ट करने का और कोई तरीका नहीं। हम सब जानते हैं कि संसार में आज अगर पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, टेंशन या ये कहें कि मनुष्य पिसता जा रहा है, उसके जीवन की सुख शांति छिनती जा रही है, धन संपत्ति और साधन होते हुए भी मनुष्य अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा है, तो इसका एक सबसे प्रमुख कारण जन्म जन्म के बढ़े हुए पाप हैं। कौन सा पाप मनुष्य के सामने किस समय आकर अवरोध पैदा कर दे, उसके विकास में बाधक बन जाए, उसकी धन संपत्ति को नष्ट करने वाला बन जाए, उसके जीवन को आपदाओं से आघेरे, ये मनुष्य को पता नहीं चलता। अचानक होते हुए एक्सीडेंट, बढ़ती हुई आपदाएं, मनुष्य का घिरता हुआ समस्याओं से जीवन, ये इस बात के प्रतीक हैं कि उसके पिछले जन्मों का बढ़ा हुआ पाप बहुत है और इस जन्म में भी उसके पाप की सीमा बहुत बढ़ गई है। इसलिए इन पापों से स्वयं को नष्ट मुक्त करना ये हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है जीवन का सुख पाने के लिए, और ये काम केवल राजयोग के अभ्यास के द्वारा ही होता है। कई लोग जो ऐसा सोचते हैं कि कुछ तांत्रिक लोग या कुछ और इस संसार में आजकल मंत्र सिखाने वाले लोग, भिन्न भिन्न तरह की क्रियाएं सिखाने वाले लोग, कुंडलिनी जागरण करने वाले योगी ऐसे चमत्कारिक योग सिखा देते हैं जिससे मनुष्य को तत्काल सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उन सिद्धियों का प्रयोग करके वो समाज को और संसार को चमत्कृत करने लगता है। तो हम में से कई उन योगों की चर्चा सुनकर, उनका चमत्कार और प्रभाव देखकर ऐसा मान बैठते हैं कि वो योग शायद बहुत बड़ा है, हमारा योग तो बहुत साधारण है, इससे तो कोई प्रत्यक्ष प्राप्ति होती दिखाई नहीं देती। परंतु हमें ये बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि बाबा हमारी शक्तियों को इन चमत्कारिक रूप में या सिद्धियों के रूप में बदल देना नहीं चाहता। सिद्धि वाले लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो साधक सिद्धियों के पीछे चलने लगता है वो साधक एक दिन अवश्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि सिद्धियों का लोभ, चमत्कार दिखाने पर मिला हुआ मान सम्मान और प्रशंसा उसको अहंकार की ओर ले जाती है और धीरे धीरे उसकी शक्तियां नष्ट होती हैं और कहीं कहीं मनुष्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके भी अपनी शक्तियों को नष्ट कर देता है। बाबा हम सभी को पावन बनाने के लिए आए हैं। बाबा आए हैं इस संसार में नए धर्म और देवी राज की स्थापना करने के लिए। बाबा आए हैं हम सभी के जन्म जन्म के पापों के बोझ से हमें मुक्त करने के लिए, हमारे संस्कार और विचारों में दिव्यता भरने के लिए, हमारी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ दिव्य बहुत स्वच्छ बनाने के लिए। इसलिए वो हमारी इन योग की शक्तियों का प्रयोग इन चमत्कारों के रूप में, अल्पकालीन सिद्धियों के रूप में नहीं करना चाहता, लेकिन हमें भी इस राजयोग से बहुत बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आगे चलकर हम पाएंगे जब हमारा योग पूर्ण होगा, जब इसमें हम अधिक अभ्यास करने लगेंगे तो हमें दूर दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। हम यहाँ बैठे न केवल इस संसार के दृश्य देख पाएंगे, लेकिन सूक्ष्म लोक में क्या हो रहा है उसका भी स्पष्ट चित्रण हमारे सामने आ जाएगा। हम दूसरों को देखते ही उनके मन के भावों को सहज रूप से पढ़ लेंगे, उनके पास्ट और फ्यूचर को जान लेंगे। इतना ही नहीं, अपनी दृष्टि डालकर दूसरों के बढ़े हुए रोगों को भी समाप्त कर देंगे। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा दूसरों की समस्याओं को तत्काल समाप्त कर देंगे। इस तरह हमें भी बहुत सिद्धियां प्राप्त होंगी, लेकिन उससे पहले बाबा हमारी शक्तियों को स्व परिवर्तन में, आत्मा को पावन बनाने में, हमारे अंदर शक्तियों का विशाल संग्रह करने में, हमें राजाई के योग्य करने में कर रहा है। इसलिए हमें इन अल्पकालीन सिद्धियों की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो चलें हम फिर से राजयोग की गहन चर्चा की ओर। ये योग सभी योगों का राजा है, क्योंकि स्वयं भगवान ने सिखाया है। संसार के किसी भी योग में, चाहे वो महर्षि पतंजलि का राजयोग हो, सहज योग हो, विपस्यना हो, कुंडलिनी जागरण हो, और किसी तरह के हठ योग, तंत्र योग, मंत्र योग हो, किसी में भी आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हो पाता। लोग कहते हैं अनेक वर्ष, कोई कोई तो कहते हैं हजारों वर्ष इस योग का अभ्यास करने के बाद तुम्हारा मिलन परमात्मा से होगा या तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। परंतु हमारा ये योग है जिसमें योग अभ्यास करते ही हमारा मिलन परमात्मा से होता है। तो ये योग क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान ने सिखाया है, इसलिए हमारे मन और बुद्धि को वो अपने से जोड़ने का हमें मार्ग बताते हैं, जिसे हम राजयोग कहते हैं। इसलिए हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये योग सभी योगों का राजा अर्थात उनसे श्रेष्ठ है। इस योग से जो प्राप्तियां होती हैं, उन योगों से तो इसकी भेंट में क्षणिक प्राप्ति भी नहीं होती है, लेकिन उसमें तत्कालीन आकर्षक करने वाली प्राप्तियां हैं, और इसमें इस समय हमारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने वाली गुप्त प्राप्तियां हैं। इसमें हम निरंतर सुख, शांति, अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद का अनुभव करते हैं, और उसमें मनुष्य क्षणिक खुशी का आभास करता है। तो हमें इस योग अभ्यास में स्वयं से कुछ मेहनत अवश्य करनी है। बिना मेहनत के हम इसकी संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं होंगे। हम ये जानते हैं कि हमें योग अभ्यास में अपने मन और बुद्धि, इन दो शक्तियों का विशेष रूप से प्रयोग करना होता है। मन हमारा स्मृति करता है, और बुद्धि जो कि थर्ड आई है, तीसरा नेत्र है, वो बाबा के उस स्वरूप का दर्शन करता है, विजुअलाइजेशन करता है। तो पहले हमारे मन में स्मृति आती है, और फिर हमारी बुद्धि उस स्वरूप को देखने लगती है, उस पर स्वयं को स्थिर कर देती है। जैसे ही हमारी बुद्धि सर्वशक्तिवान के स्वरूप पर स्थिर होती है, सर्वशक्तिवान की संपूर्ण शक्तियां स्वतः ही हमारे अंदर आने लगती हैं। हमें बाबा से शक्तियां मांगने की जरूरत नहीं, हमें शांति के सागर से शांति मांगने की जरूरत नहीं। हम अपनी बुद्धि को उसके स्वरूप पर स्थिर करते हैं, और उससे सर्व प्राप्तियां हमें होने लगती हैं। यही इस राजयोग की बहुत बड़ी सुंदरता है कि इसमें कुछ मांगना नहीं है, लेकिन भगवान के बच्चे होने के नाते इन शक्तियों का अधिकारी बनना है। मांगना भक्तों की विधि है और मांगने वालों को भी अल्पकालीन प्राप्ति हो जाती है, परंतु हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, हमें अधिकार से सब कुछ मिल जाता है। तो हमारा काम है अपने मन को और बुद्धि को बाबा पर स्थिर करना, मन को उसके चिंतन में स्थित करना, बुद्धि को उसके स्वरूप पर स्थिर करना। इन दोनों बातों के अभ्यास से हम योग में विशेष विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू कर लेते हैं। सवेरे उठने से बाबा ने हम सभी को अमृत वेले का समय विशेष रूप से वरदान के रूप में दिया है। इसमें सबसे बड़ा लाभ हमें ये है, यों तो हम दिन में भी योग अभ्यास करते हैं और कर सकते हैं, दिन में भी हमें बाबा की याद से प्राप्तियां होती हैं, पर अमृत वेले का विशेष महत्व ये है कि देने वाला श्री बाबा स्वयं अपनी ओर से हमें बहुत कुछ देता है। वो वरदान देने के लिए तत्पर रहता है सवेरे के समय। वो हमारी बुद्धि में अनेक विशेष विशेष संकल्प टच करता है सवेरे, तो सारा दिन हमें उससे लेने के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ती है और सवेरे के समय वो अपनी ओर से ही हमें सब कुछ देता है। इस अवसर का फायदा उठाते हुए हमें रोज सवेरे अच्छे योग अभ्यास के द्वारा स्वयं को ईश्वरीय प्यार और ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर करना चाहिए। कैसे हम ये सब काम करेंगे? नॉर्मली अगर ब्राह्मणों को देखा जाए तो अधिकतर ब्राह्मणों के जीवन में अमृत वेले का आनंद नहीं है। अनेक उठते तो हैं, लेकिन उठने के बाद उन्हें विशेष आनंद नहीं आता। कभी आता है, कभी नहीं आता। किसी को आता है, किसी को नहीं आता। किसी का समय नींद में बीतता है, किसी का समय सुस्ती में। लेकिन अगर हम अमृत वेले के समय को पूर्ण सफल करना चाहते हैं तो हमें इस तरह अभ्यास करने चाहिए। सबसे पहले आंख खुलते ही हम अपने प्रारंभिक अभ्यासों में अपने पहले संकल्प को चेक करें कि हमारे पहले संकल्प कहीं जा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर पहले संकल्प हमारे इधर उधर चले गए तो उसके बाद संकल्पों की एक चेन शुरू हो जाएगी और हम अपनी पटरी से नीचे उतर जाएंगे और फिर उन संकल्पों को कंट्रोल करना बहुत कठिन काम होगा। सवेरे जैसे ही आंख खुले हम अपने को भिन्न भिन्न तरह के संकल्प दें। उदाहरण के लिए, मैं इस तन में अवतरित आत्मा हूं, पहला संकल्प। या आंख खुले और अपने सामने शिव बाबा को देखें, चमकती हुई ज्योति को देखें, उससे बात करने लगें, उसको धन्यवाद देने लगें, उससे गुड मॉर्निंग करें, उसके उपकारों को याद करें। या सवेरे उठते ही हम इस खुशी में डांस करना आरंभ कर दें कि वाह मेरा भाग्य, भगवान मिला, आंख खुलते ही भगवान के दर्शन हुए, उठाया भी मुझे उसने ही, कैसा मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, जब सारा संसार सोया हुआ है तब बाबा मुझे सब कुछ दे रहा है, जब सारा संसार गहरी नींद में है तब भगवान अपने बच्चों को अमृत बांट रहा है, वरदान बांट रहा है, शक्तियां बांट रहा है, भाग्य बांट रहा है, तो मैं बाबा से संपूर्ण भाग लेकर ही रहूंगा। मैं आज बाबा से कुछ न कुछ वरदान प्राप्त अवश्य करूंगा। इस तरह के संकल्प अपने मन में क्रिएट करके अपने को पूर्णतया मगन कर दें। ऐसे ही तीसरी बात, स्वयं को किसी स्वमान में स्थित कर दें। अपने से प्रश्न करें, मैं कौन हूं? बाबा के शब्दों में, रोज सवेरे उठकर अपने को स्मृति का तिलक लगाओ। जिस स्मृति का तिलक तुम सवेरे सवेरे स्वयं को लगा लोगे, उस स्मृति का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में सारे दिन दिखाई देगा। उदाहरण, मैं एक विजयी रतन हूं। इस स्मृति को अपने अंदर भर दो, अपने विवेक में समा दो कि हे आत्मा, तुझे भगवान ने विजयी भव का वरदान दिया है। विजय तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुझे विजय प्राप्त नहीं होगी तो भला और किसको होगी। इस तरह अगर सवेरे स्वयं के मस्तक पर विजय का तिलक लगाएंगे तो सारा दिन कर्म क्षेत्र पर, समस्याओं के बीच में, दूसरे मनुष्यों पर, परिस्थितियों पर विजय का अनुभव होता रहेगा। दूसरी बात, सवेरे सवेरे अपने मस्तक पर तिलक लगा दें, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और सारा दिन सफलता का अनुभव होगा। सवेरे सवेरे अपने को याद दिला दें कि हे आत्मा, तू विघ्न विनाशक है। दो तीन बार याद दिलाएं, सारा दिन जीवन विघ्नों से मुक्त रहेगा। सवेरे सवेरे स्वयं के मस्तक पर तिलक लगा दें कि हे आत्मा, तू मास्टर सर्वशक्तिवान है। सारा दिन शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा। इस तरह सवेरे बाबा से रुरिहान करते हुए पहले अपने मन को श्रेष्ठ संकल्पों के आनंद से आनंदित करें। हम में से कई लोग जो ऐसा सोच लेते हैं कि केवल बिंदु रूप स्थिति से ही विकर्म विनाश होंगे, और ऐसा सोचकर सवेरे सवेरे वो अपने मन के संकल्पों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा ही नुकसानदायक सिद्ध होता है, क्योंकि सवेरे वैसे भी माहौल के अनुसार किसी पर नींद का प्रभाव होता है। सारा संसार भी नींद में है, किसी पर उनके वाइब्रेशंस भी अटैक करते हैं, और अगर हम निर्संकल्प होने की सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमें नींद आ जाएगी। न विकर्म विनाश होंगे, न मिलन का आनंद आएगा। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि इस संकल्प को हम छोड़ दें कि योग से, बिंदु रूप से, किस स्थिति से हमारे विकर्म विनाश होंगे। हमें तो ईश्वरीय मिलन से स्वयं को आनंदित करना है। हम विकर्म विनाश के लक्ष्य को छोड़कर ईश्वरीय मिलन का लक्ष्य लें, उससे शक्तियां प्राप्त करने का लक्ष्य लें, उससे वरदान ग्रहण करने का लक्ष्य लें, तो हम समझते हैं हमारा जीवन अधिक सफल होगा, और विकर्म तो हर तरह के योग से विनाश होंगे ही। जब हमारा चिंतन, जब हमारी स्मृति, जब हमारी एकाग्रता इस संसार से परे है, तब हमारे विकर्म विनाश हो ही रहे हैं। ये हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसके बाद हमने पहले ही दिन दो रूहानी ड्रिल की बात की थी। कल उन ड्रिल्स का अभ्यास सवेरे करें। रूहानी ड्रिल से, स्पिरिचुअल ड्रिल से सुस्ती भी खत्म हो जाएगी तन की भी और मन की। मन योग करने के लिए इच्छा करेगा, एकाग्रता बहुत अच्छी होगी, और इस तरह सवेरे का समय सफल हो जाएगा। किसी को अगर नींद आती हो तो उसको चाहिए कि वो योग में ज्यादा समय एक स्थान पर न बैठे, 5-10 मिनट बैठ के थोड़ा घूम फिर ले, घूम फिर के योग करे, फिर बैठे, फिर घूमे, फिर बैठे, अव्यक्त मुरली पढ़ ले, कोई कुछ लिख ले। इस तरह पहले कोशिश करनी चाहिए कि सवेरे का समय सफल हो। योग में नींद आती है तो स्टडी में सफल करें, स्वमान में स्थित होकर सफल करें। पहले हम स्वयं को सुस्ती के प्रभाव से मुक्त करें तो धीरे धीरे हमारा योग अवश्य पावरफुल होता जाएगा। बाबा ने अमृत वेले के लिए अनेक बातें कही हैं। अधिकारी बनकर बैठो, इस स्मृति में बैठो कि बाबा का मैं अधिकारी बच्चा हूं। कहा है बाबा ने, अपनी बुद्धि को खोल कर बैठो, स्वच्छ करके बैठो, ताकि बाबा उसमें शक्तियां भर सके, बाबा उसमें वरदान भर सके। तो इसके लिए मन को व्यर्थ से मुक्त करके बैठना है। इसके बाद दूसरी चीज, जब हम मुरली सुनने बाबा के पास जाते हैं, हर एक बाबा के बच्चों को मुरली से बहुत प्यार होना ही चाहिए। वो प्यार इसलिए नहीं कि मुरली सुनना नियम है, लेकिन मुरली हमें बहुत रस देती हो, मुरली हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करती हो, मुरली हमारे जीवन को आनंदित कर देती हो, मुरली हमारे मन को मगन कर देती हो, मुरली हमें ईश्वरीय प्यार से ओतप्रोत कर देती हो। इन अनुभवों के लिए हम मुरली में जाएं और मुरली का संपूर्ण आनंद लें। मुरली सुनाने वालों को भी ये चाहिए कि वो मुरली में रस भरें, केवल पढ़ें नहीं, मुरली की जो गहराई है वो सुनने वालों की समझ में आ जाए। इस तरह से मुरली पढ़ें, इस तरह से मुरली पे चर्चा कराएं तो डबल फायदा होगा। मुरली सुनने के लिए बाबा ने हमेशा कहा है, इस नशे में मुरली सुनो कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, इस नशे में मुरली सुनो कि मुझे भगवान पढ़ाने आ रहा है परमधाम से, इस स्थिति में मुरली सुनो कि मैं इस देह में अवतरित आत्मा हूं, मैं इस देह में बैठकर कानों से भगवान के महावाक्य सुन रही हूं। क्यों ये जरूरी है, इसके लिए हमें एक छोटा सा सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हमारी बुद्धि की ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति एक ही तरफ काम करेगी, चाहे मन की तरफ चाहे बुद्धि की तरफ। अगर हमारा मन व्यर्थ संकल्पों में है तो आत्मा की सारी शक्तियां उन संकल्पों में जा रही हैं, बुद्धि के लिए शक्ति बचती नहीं, इसलिए बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती। तो मुरली सुनते समय हम इन भिन्न भिन्न अभ्यासों के द्वारा अपने मन को शांत करके बैठें, आनंदित करके बैठें, तो आत्मा की सारी शक्तियां बुद्धि की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी और बुद्धि की ग्रहण शक्ति और धारणा शक्ति बढ़ जाएगी, और जो कुछ बाबा मुरली में सुनाएगा वो साथ साथ ग्रहण भी हो जाएगा, स्मृति में भी रहेगा और धारणा में भी आ जाएगा। मुरली अगर इस स्थिति में हम स्थित होकर सुनेंगे तो मुरली हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगा। इस समय में ही हमारे जीवन में अनेक धारणाएं समा जाएंगी और हमें धारणाओं को करने के लिए अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में अगर हम साक्षी होकर देखें तो कोई ब्राह्मण अनेक वर्षों से एक ही धारणा से संघर्ष कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति सहनशीलता के लिए संघर्षरत है, किसी का जीवन बीत गया क्रोध से मुक्त होने के लिए वो संघर्षरत है, किसी को घृणा और ईर्ष्या सता रही है, कोई अपने काम विकार को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया है, कोई अपने चिड़चिड़ेपन को नष्ट नहीं कर पाया है, कोई अपने स्वभाव को सरल नहीं बना पाया है, किसी में अवगुणी दृष्टि उसके लिए श्राप बनी हुई है, तो किसी के लिए व्यर्थ चिंतन और परचिंतन ही जीवन के मार्ग में सबसे बड़ी दीवार है। हम एक एक धारणा को धारण करने में अगर समय देंगे तो हमारा जीवन बीत जाएगा। योग एक ऐसा केंद्र है जिसमें सभी धारणाएं स्वतः ही जीवन में समा जाती हैं। हम अपना संबंध सर्वशक्तिवान से जोड़ें, बाबा के शब्दों में, तुम ज्ञान सूर्य की किरणों के सामने रहो तो उसकी गुण शक्ति और पवित्रता की किरणें तुम्हारे अंदर निरंतर समाती जाएंगी, तुम्हारे अंदर गुण बढ़ते जाएंगे, शक्तियां बढ़ती जाएंगी, पवित्रता बढ़ती जाएगी। तो ये विधि है कि हम अपने जीवन को सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, संपूर्ण प्योरिटी से संपन्न बना सकते हैं, यही योग की सबसे बड़ी सिद्धि है। तो एक ही योग को साधने से सब साधनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं, और बिना योग के अगर हम धारणा करने की कोशिश करते हैं तो धारणाओं में सफलता भी नहीं मिलती, समय भी बहुत जाता है और जीवन में निराशा भी बहुत बढ़ती है। इसलिए हमें योग पर ही विशेष ध्यान देना है अपनी दिनचर्या में। हमें ऐसे समय नियुक्त निश्चित करने हैं ताकि हम सहज रूप से योग का अभ्यास कर सकें। मैं कुछ बातें आप सभी के लिए सजेस्ट कर रहा हूं जिसके आधार से आप सभी अपने योग अभ्यास को आगे बढ़ाएं। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जीवन में सबसे अधिक सहायक हो सकता है योग को सरल करने के लिए, कि अपनी दिनचर्या को कम से कम 8 भागों में बांट लो, कर्म के अनुसार, और हर कर्म में अलग अलग स्मृति का स्वरूप होना है ऐसा निश्चित कर लो। स्वयं ये काम सभी को करना है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा केवल। इससे पहले मैं एक बात कहूं कि हमें योग अभ्यास करते करते योग की एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जहां हमें योग अभ्यास करने की जरूरत नहीं रहेगी, जिसको कहा जाता है योग युक्त जीवन स्मृति स्वरूप स्थिति। मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, बिल्कुल सत्य घटना, बात 72 की है। अव्यक्त बाबा आए हुए थे और बाबा को मुरली के बाद जूस दिया गया पीने के लिए। बाबा ने उसको हाथ में लिया और कुछ क्षणों के लिए उसको दृष्टि दी, पीना शुरू किया। पास में बैठी थी सील इंदिरा दादी बॉम्बे की, उन्होंने फट से बाबा से पूछा, वो बड़ी रमणीक थी और बाबा से बहुत हंसी किया करती थी, बाबा से पूछा, बाबा आप किसे याद कर रहे थे? बाबा ने दृष्टि दी थी ना जूस को। तो शिव बाबा ने ये सुनते ही उत्तर दिया ब्रह्मा बाबा के लिए कि इसको अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। तब से मुझे समझ में आया कि स्मृति स्वरूप स्थिति कुछ बहुत बड़ी स्थिति है। योग एक साधना है, एक अभ्यास है, और उससे हमारी जो स्थिति बनेगी उसको हम स्मृति स्वरूप स्थिति कहेंगे। इसको हम कल लेंगे विस्तार से स्वमान के साथ, परंतु हमें योग करते करते उसको इतना नेचुरल बनाना है कि बाबा मेरा है और मैं बाबा का हूं और उस पर और उसकी शक्तियों पर हमारा अधिकार है, ऐसी स्मृति स्वरूप स्थिति हमारी आ जाए। तो अपनी दिनचर्या को इस तरह कुछ भागों में बांट लें, एक समय अमृत वेले का जिसकी चर्चा हम कराए, दूसरा समय मुरली का, तीसरा समय स्नान का, चौथा समय भोजन खाने का या भोजन बनाने का, जिनको भोजन बनाना है, पांचवा समय जब आप अपने कार्य पे जाते हैं, दुकान है आपको, बिजनेस है या आपको ऑफिस है, छठा समय एकांत का, सातवा समय सोने से पहले का, और आठवां समय कुछ भी पीने का, चाहे पानी पिए, चाय पिए, दूध पिए, कुछ भी जब हम पीते हैं। ये मैंने उदाहरण दिए, आप अपनी दिनचर्या के अनुसार, अगर आप टीचर हैं उस अनुसार अपनी दिनचर्या को कर्म अनुसार 7-8 भागों में बांट लें, आप दुकान पर बैठते हैं उस अनुसार बांट लें, आप डॉक्टर हैं उस अनुसार बांट लें, आप जिस तरह का भी प्रोफेशन करते हैं, जो भी जॉब आपकी है, उस अनुसार अपनी दिनचर्या को बांटकर भिन्न भिन्न स्मृतियों का उसमें अभ्यास करें। जब आप पानी पिएंगे तो कौन सा अभ्यास करेंगे? स्वयं भगवान ने मुझे ज्ञान अमृत पिलाया है, तो 5 सेकंड के लिए अपनी बुद्धि सर्वशक्तिवान से जोड़नी है, ऐसा एक प्लान बना लें। गिलास हाथ में आया, कप हाथ में आया, और ये याद करते हुए कि स्वयं भगवान ने मुझे ज्ञान अमृत पिलाया है, 5 सेकंड के लिए अपनी बुद्धि उससे जोड़ देनी है। दूसरा, स्नान करते हैं क्या स्मृति रखेंगे? ये शरीर मेरा मंदिर है और मैं आत्मा इसमें बैठी हुई चेतन मूर्ति इष्ट देव इष्ट देवी हूं, मैं अपने मंदिर की सफाई कर रही हूं, ऐसे स्मृति रख सकते हैं कि ये देह प्रकृतिकृत है, मैं आत्मा इस प्रकृति की और संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूं, मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूं, इस तरह स्वराज अधिकारी हूं। इस चिंतन को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर स्वराज अधिकारी हूं तो विश्वराज मुझे प्राप्त होने जा रहा है। ऐसे ही भोजन बनाते समय क्या स्मृति रखेंगे? और बोलो क्या स्मृति रखेंगे? देवताओं के लिए भोजन बना रहे हैं, ब्रह्मा भोजन में स्वयं बाबा को ऑफर करने के लिए, अपने साजन के लिए, अपने प्रियतम के लिए भोजन बना रहे हैं। और यह अभ्यास कर सकते हैं कि बाबा परम धाम से इस भोजन पर अपनी किरणें डाल रहा है, प्योरिटी की किरणें, और वो पवित्रता की किरणें इस भोजन में समाती जा रही हैं। जब हम भोजन खाएं तो क्या स्मृति रखेंगे? एक पीस बाबा को खिलाएं, दूसरा स्वयं को खिलाएं। ये देह मोटर है, इसकी पालना कर रहे हैं हम, लेकिन बाबा को खिला रहे, सूक्ष्म वतन को इमर्ज कर लें और सूक्ष्म रूप में बाबा के मुंह के पास ले जाएं हाथ अपना, उसको खिलाएं, फिर खुद खाएं, कितना आनंद आएगा। अगर हम भोजन खाने के समय को तपस्या बना ले जीवन की, तो ये समय वास्तव में आत्मा को पावन करने वाला बन जाएगा, क्योंकि भोजन हमारे ब्रेन को सीधा प्रभावित करता है। इसलिए भोजन कि हम बाबा से कंबाइंड हैं, भोजन कर रहे हैं। हम इस स्मृति में भोजन कर सकते हैं कि बाबा के वाइब्रेशंस हमारे ऊपर पड़ रहे हैं और हम भोजन कर रहे हैं। हम बाबा से बात करते हुए भोजन खा सकते हैं कि बाबा आप अपने भोलानाथ के भंडारे से हमारी पालना कर रहे हो, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं, भगवान हमें पाल रहा है। इस स्मृति के नशे में भी हम स्वयं को ले चल सकते हैं। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए साधारण रूप से जो बहुत व्यस्त है अपने कर्म में, वो कर्म के बीच बीच में कम से कम 3 बार इस स्मृति को अपने अंदर लाया करें कि भगवान मेरा साथी है। बहुत सुंदर अनुभव होंगे, उसके साथ को फील करें, न केवल संकल्प करेंगे लेकिन एक विजन बनाए, चित्र बनाए कि वो ऊपर से उतर कर सूक्ष्म लोक में आया और दोनों बाप दादा नीचे उतर आए हैं, मेरे साथ हैं, भगवान स्वयं मेरा साथी है, इसको अपने नशे में ले आए। या जो और अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं वो बीच बीच में 3 बार का अपना प्लान अवश्य रखेंगे हर चीज का, कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा काम करा रही हूं, मैं करावनहार हूं, ऐसी स्मृति ले आए। या बीच बीच में कभी कभी ऐसी स्मृति लाएं कि बाबा परम धाम से अपनी शक्तियां मुझे दे रहे हैं, मुझे कर्म करने का बल प्रदान कर रहे हैं, मुझे ऊपर से सफल भव का वरदान दे रहे हैं, मुझे ऊपर से निर्विघन भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी स्मृति हम कर्म करते हुए कर सकते हैं। एकांत के समय विशेष रूप से हम श्रेष्ठ संकल्प रचें अपने अंदर इस स्मृति से कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, पूर्वज आत्मा हूं, साक्षात्कार मूर्त हूं, मुझे विश्व का कल्याण करना है, पूर्वज हूं तो सबकी पालना करनी है, साक्षात्कार मूर्त हूं तो सबको बाप का साक्षात्कार कराना है, इतने बड़े कार्य मुझे करने हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मेरे अंदर हैं। इन स्मृतियों के आते ही हमारे अंदर श्रेष्ठ चिंतन चलने लगेगा और बाबा की याद में भी हम स्थित हो जाएंगे। हर ब्राह्मण को अपने जीवन में एकांत का समय अवश्य निकालना चाहिए, कम से कम आधा घंटा। एकांत से न केवल नए नए तरह का चिंतन हमारे पास आता है, बल्कि हमारे जीवन में उमंग उत्साह बढ़ता है, हमें स्वयं को देखने का मौका मिलता है, स्वयं की कमियों को जानने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि सबसे अच्छा पुरुषार्थी वो जो अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी को भी पहचानता हो। एक योगी आत्मा अगर अपनी कमी को जान लेती है तो उसको वो कमी निकालना कठिन काम नहीं होता, क्योंकि संसार में नॉर्मल रूप से हर व्यक्ति तो दोष दूसरे को ही दे रहा है। योगी कभी दूसरों को दोष नहीं देते। योगी अपनी गलती को पहचानकर अपने को करेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए एकांत आवश्यक है, जहां हम खुले दिल से शिव बाबा से बात कर सकें। सोने से पहले बहुत अच्छा समय है, हमें अगले दिन की तैयारी करनी है, और पिछले दिन का अगर मन पर कुछ भी बोझ है, कोई चिंता है, कोई भय है, उसको भी समाप्त करना है। इन दोनों ही कामों के लिए एक बहुत अच्छी विधि है कि हमें रोज रात को 5-7 मिनट अपने लिए स्पेयर कर लेने चाहिए और बाबा के नाम पत्र लिख दें। जो कुछ भी आज हुआ है वो पत्र लिखकर बाबा को सुना दें, अच्छा या बुरा, नशे की बात हुई या कोई निराश करने वाली बात हुई, सभी बाबा को सुना दे पत्र के रूप में। अगले दिन के लिए संकल्प कर लें कि हम वैसा नहीं करेंगे। और सोने से पहले अगले दिन जैसी स्थिति का अभ्यास हम करना चाहते हैं, उसी स्थिति का अभ्यास करके सोएं। केवल 3 मिनट देने से काम नहीं चलेगा। जिनको अपनी स्थिति को योगयुक्त बनाना है, उनको कम से कम सोने से पहले 15 मिनट अगले दिन की तैयारी करने के लिए देने चाहिए। इसमें स्वयं को स्वमान में स्थित करना, बाबा से प्यार भरी रूरिहन करना और कम से कम 5 मिनट संपूर्ण एकाग्रता का अभ्यास करना, इन 3 विधियों के द्वारा अपने को तैयार कर देना चाहिए। तब अगले दिन सवेरे आंख खुलते ही अच्छे से अच्छे अनुभव होने लगेंगे। तो ये विधि है, बहुत सरल रूप से हम अपनी दिनचर्या में योग को ऐसा सम्मिलित कर सकते हैं कि योग युक्त जीवन बन जाए। इसके साथ साथ योग के संबंध में मैं कुछ और थोड़ी सी बात आपके सामने रखूं, उसमें एक है सर्व संबंधों का अनुभव। बाबा हमारे पास आया है सर्व संबंधों का प्यार लेकर। उसने हमें सर्व संबंधों की पालना भी दी है और देगा भी। न केवल वो हमारा बाप है, बाप तो वो सबका ही है, इसलिए हमारा भी बाप ही हो ये कोई विशेष नशे की बात नहीं। नशे की बात तो ये कि हमारे लिए आया वो टीचर बनकर, हमारे लिए आया वो दोस्त बनकर, और वो कहता है कि तुम अगर मुझे अपना बच्चा भी बना लो तो मैं तुम्हारे सभी दुख दूर कर दूंगा, अंतिम समय मैं तुम्हारी संपूर्ण सेवा करूंगा। वो आया हम आत्माओं का प्रियतम बनकर, हमारे जन्म जन्म के प्यार का रिटर्न देने के लिए। उसने मां बनकर हमारी पालना भी की है। तो सर्व संबंधों से वो हमारे पास आया है। एक में हमारे सब संबंध समाये हुए हैं। हम एक ही साथ सर्व संबंधों का भी अनुभव कर सकते हैं, या किसी एक विशेष संबंध को लेकर उससे भी सारे रस प्राप्त कर सकते हैं, या अलग अलग समय पर अलग अलग संबंधों के भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। कभी हम साजन के रूप में उसे देखें, कभी बच्चा बनाकर उसके साथ खेलें, कभी दोस्त बनकर उसके साथ चलें, कभी उसको अपनी मां बना लें और उसके प्यार में खो जाएं, उसकी पालना का अनुभव करें। बाप और सदगुरु तो वो हम सबका है ही, उस पर हमारा अधिकार है। तो एक एक संबंध को भी हम अनुभव में लाएं। कैसे लाएंगे, इसके लिए मैं संक्षिप्त चिंतन आपके सामने रख देता हूं। पहली चीज ये होती है कि जिस संबंध का हम अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, उस संबंध को हमारा विवेक स्वीकार करे कि भगवान हमारा दोस्त है, या बच्चा है, इसको हमारा अंतर विवेक स्वीकार करता हो, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। भगवान किसी का दोस्त बन जाए, मनुष्यों की कल्पना से भी परे की चीज है, लेकिन वो तो हमारा दोस्त बनकर आया है, वो तो हमारा दोस्त है, लेकिन दोस्ती का अनुभव कब होगा? जब हम भी उसके दोस्त बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है, वो तो हमारा साजन है, लेकिन साजन होने का अनुभव तब होगा जब हम उसकी सजनी बन जाएं, जब उसके प्यार में हम खो जाएं। इस तरह पहले हमारी बुद्धि उस संबंध को स्वीकार करे। दूसरी चीज, उस संबंध के नशे में हम रहने लगे। लौकिक संबंधों का हमें नशा होता है। किसी कन्या की शादी किसी ऐसे लड़के से हो गई हो जिसकी बड़ी पोस्ट हो, मान लो कलेक्टर हो, और उसकी शादी उससे हो गई हो, तो जिस दिन से सगाई होगी उसी दिन से नशा हो जाएगा। वो भी दूसरों को बताने लगेगी और दूसरे बताने लगेंगे, और सब उसके भाग को देखकर उसके भाग की सराहना करने लगेंगे, ईर्ष्या भी करने लगेंगे। आजकल तो सोचते हैं ना, किसी कन्या को अच्छा पति मिल जाए, भाग्यशाली पति मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए तो उसका जीवन सफल, और शराबी पति मिल जाए, लड़ने झगड़ने वाला मिल जाए तो जीवन नरक, और हमें पति मिल गया सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता, जिसके बाद और कुछ प्राप्त करना नहीं रह जाता, जो प्यार का भी सागर है, जो कष्ट देने की तो बात छोड़ो, छोटे से छोटा दुख भी हमारा हर कर जन्म जन्म के लिए हमें सुखी बना देता है। तो हमारा विवेक उसको उस नशे में रहने लगे। दोस्त है वो तो हमें नशा चढ़ जाए, भगवान हमारा दोस्त, नशा चढ़ जाए हमें, बहुत नशा हो जाए, तब इस दोस्ती का, इस संबंध का रस प्राप्त होगा। तीसरी चीज, हम उसको उसी स्वरूप से देखने लगें, विजन बना लें, चित्र बना लें। देख तो सकते हैं ना, बच्चा अगर हम उसको बनाते हैं तो बच्चे के रूप में हम उसे देखें अपने सामने, फ्रेंड बनाते हैं तो फ्रेंड के रूप में देखें। यहां किसी को संकल्प चलता है कि शिव बाबा को कैसे देखें उस रूप में, तो उसका तो माध्यम एक ही है, अव्यक्त ब्रह्मा। किसी को यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा का शरीर तो बहुत बड़ा है, बच्चा कैसे होगा? लेकिन सूक्ष्म शरीर संकल्प से ही छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए जब आप उसको बच्चे रूप में देखेंगे तो बच्चे रूप में ही दिखाई दे जाएगा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि संकल्प की रचना है। और चौथी चीज, जिस संबंध को हम अनुभव करना चाहते हैं उसी संबंध से उससे रूढ़ियान किया करें रोज, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवी चीज जो और अधिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी संबंध का सुख तब मिलता है जब संबंध में दोनों ही अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हों। हमने उसे अपना बच्चा तो बना लिया हो, लेकिन बच्चे को भोजन के लिए भी न पूछते हो, दोस्त तो बना लिया हो लेकिन दोस्ती निभाते ही ना हो, यही कहते हो तुम दोस्त हो लेकिन हम नहीं, साजन तो बना लिया हो लेकिन प्यार किसी और से करते हो, तो संबंध का सुख नहीं मिलेगा। साजन के संबंध में तो लौकिक में भी ये है ना, पति को पता लग जाए कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है तो क्या होगा, झगड़े शुरू उसी दिन से, कहीं तो मर्डर हो जाते हैं, कहीं तो पत्नी पति का मर्डर करा देती है, कहीं पति पत्नी का करा देता, न भी होगा तो अविश्वास, मन मुटाव, तलाक। भगवान अगर देखे कि मेरी सजनी और उसे प्यार कर रही है तो संबंध का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। इस तरह हम सभी संबंधों का अनुभव कर सकते हैं, और यही कारण है कि बाबा ये कहते हैं कि कोई भी संबंध का सुख मिस न हो, नहीं तो वो संबंध खींचेगा अवश्य, और अगर न भी खींचे तो हमारे जीवन में एक मिसिंग अवस्था रह जाएगी। क्यों नहीं कर सकते हैं का तो प्रश्न ही नहीं, करना है, उसको अपना साजन भी बनाना है और बाबा ने कहा सजनी बनाना चाहो तो किसकी सजनी, आत्मा की सजनी होती है? आत्मा की तो सजनी होती ही नहीं, आत्मा स्वयं सजनी है। सजनी शिव बाबा को सोचना देहभान हो गया ना, अपने को साधन सोच रहे पुरुष, पुरुष हम है ही नहीं, हम तो सजनी हैं। मैं इस पर मीरा की एक कहानी सुनाया करता हूं ना। मीरा जब चित्तौड़ छोड़कर मथुरा पहुंची, श्री कृष्ण का मंदिर था, गोस्वामी उसके थे मालिक इंचार्ज, उसने गोस्वामी को, सन्यासी थे वो, संदेश भेजा कि मीरा आपसे मिलने आई है। तो गोस्वामी ने उत्तर दिया कि भाई मिलने आई है बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं तो किसी नारी से मिलता नहीं। तुरंत रिटर्न में मीरा ने उत्तर का उत्तर भेजा कि मैंने तो सुना था कि नर तो केवल एक श्री कृष्ण है, आप दूसरे नर कहां से आए? और गोस्वामी को रियलाइज हो गया कि ठीक कहती है मीरा, और उसको बुला लिया। फिर वो उसी मंदिर में रही। तो भक्ति में भी ये सब होता रहा कि नर तो एक है केवल परम पुरुष, बाकी सब तो सजनियां हैं। संबंध हो गए बाप, टीचर, सदगुरु, मां, दोस्त, बच्चा, सखा, साजन, आठ संबंध हो गए। कुमार आप कहां हो? आत्मा हो। कुमारों को बच्चे की बात कहां है? यही तो गलती हो रही है। मैं कुमार हूं तो मैं साजन कैसे बनाऊं और बच्चा कैसे बनाऊं? हमें इससे पार चलना है। हम कुमार थोड़ा ही हैं, हम आत्माएं हैं। ये संबंध आत्मा और परमात्मा के बीच के हैं। इन संबंधों का सबको बहुत ज्यादा सुख लेना है। इस तरह सर्व संबंधों के द्वारा, जिसमें बाबा की योग के बारे में डेफिनेशन है, राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। जब मेरा कुछ नहीं तो मेरा कौन? मेरा कुछ नहीं संसार में, लेकिन मेरा सब कुछ है एक, एक में सब कुछ, जिसको बाबा कहते एक बाप ही संसार है। इस बार भी कहा था ना, एक बाप ही संसार, और संस्कारों के लिए क्या कहा था, हर गुण और शक्ति मेरा निजी संस्कार, हर बात। तो ये निजी संस्कार बन जाएंगे हमारे अगर हम एक को अपना संसार बनाएं। इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से चिंतन भी करना चाहिए, अपने को बार बार स्मृति भी दिलानी चाहिए कि ये देह के संबंधी तो सब आत्माएं हैं। ये तो अब के हमारे संबंध बने थे अंत में, लेकिन अब हमें ज्ञान मिल गया कि सब आत्माएं हैं। तो आत्मिक वृत्ति बढ़ाने से दैहिक संबंधों का लगाव और अट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा। और यह भी बहुत आवश्यक है कि जितना जितना दैहिक संबंधों का अट्रैक्शन समाप्त होगा, उतना एक से सर्व संबंधों का अनुभव भी प्राप्त होगा। और यह भी सत्य है कि अगर हमें इन संबंधों के अट्रैक्शन को, लगाव को मिटाना है, तो एक को अपना संसार भी बनाना है। एक को संसार बनाना और वृत्ति को आत्मिक बनाने से ये देह और देह के संबंधों से लगाव, झुकाव या अट्रैक्शन, ये सब समाप्त हो जाएगा। बोलो। हाँ, ये बात तो ठीक है, अगर हम उससे साजन का संबंध निभाएंगे। इनका प्रश्न है कि साजन का संबंध तो हम निभाते हैं, पर वो हमें सारे कल्प में विधवा क्यों छोड़ देता है? छोड़ता तो नहीं है भाई। देखो, दो युग में पहले ये प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हम पूर्णतः आनंदित हैं। रहे दो भक्ति के युग, उसमें भी हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिसने यहाँ बाबा से ये संबंध अच्छी तरह निभाए होंगे, बाबा उनके संबंधों का रेस्पॉन्स भक्ति मार्ग में भी देता आएगा, देता आया है, अनुभव कराता आएगा, मदद करता रहेगा। जिस रूप से हम उसे याद करेंगे उसी रूप से वो हमें मदद करेगा भक्ति में। भक्ति में उसने बहुत मदद की है हमें, अब हमें उसका आभास नहीं, तब अवश्य होता था कहीं देवी ने हमें भगत की मदद की, कहीं विष्णु ने हमें मदद की, कहीं शंकर ने हमें मदद कर दी। जिसकी भी हमारे मन में श्रद्धा थी उसके रूप में, वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करता आया। अंत में मैं योग अभ्यास का एक और सरलतम तरीका आपके सामने रख दूं, जिसके द्वारा आप लंबे समय तक भी योग अभ्यास कर सकते हैं, और वो है कि हम ऐसा अभ्यास करें कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर में बैठी हूं, कल हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, और मैं इससे बाहर निकलकर फरिश्ता जाता हूं, अब एक देश के ऊपर या एक सिटी के ऊपर, और उसके ऊपर स्थित होकर हम सारे मनुष्यों को वाइब्रेशंस दें एक मिनट तक, फिर हम वापिस आके इस देह में प्रवेश कर लें, फिर इस देह से निकलकर दूसरी जगह जाएं, वहां वाइब्रेशंस दें, फिर वापिस आकर इसमें प्रवेश कर लें, फिर हम तीसरी जगह जाएं, वहां वाइब्रेशंस दें, फिर वापिस आए प्रवेश कर लें। ये खेल हम करते रहें, फरिश्ता बनकर इस देह से निकलकर सारे संसार की सैर करना, सारे संसार को वाइब्रेशंस देना, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर बाबा के मैसेजेस देना सारे संसार को, या किसी व्यक्ति को कोई संदेश देना, ये भी अनुभव हम कर सकते हैं। ऐसा अभ्यास हम लंबे समय तक योग का कर सकते हैं। बीच बीच में ये जोड़ दें कि सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ फरिश्ते के ऊपर पड़ रही हैं, और मैं वाइब्रेशंस देने के लिए कहीं प्योरिटी के वाइब्रेशंस, कहीं शांति के वाइब्रेशंस, कहीं शक्तियों के वाइब्रेशंस, कहीं अपनी शक्तियां देकर दूसरों के तनाव को खत्म करना, कहीं अपनी शक्तियां देकर दूसरों के विघ्नों को नष्ट करना, कहीं अपनी शक्तियां देकर दूसरों के जीवन में छाए हुए दुख को खींच लेना। ये अभ्यास भी हम करें तो हमें नए नए अनुभव होते रहेंगे। एक बात योग की ओर, अंत में बहुत ही नशे की बात है बाबा की मुरलियों से, कि जब तुम इस कंबाइंड स्वरूप में रहते हो कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान से जुड़ा हुआ हूं, उसकी सर्वशक्तियों की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, किरणों के माध्यम से हम दोनों जुड़े हैं। अभी आप इस स्थिति में स्थित हो जाएं, नीचे मास्टर सर्वशक्तिमान और ऊपर सर्वशक्तिमान, दोनों किरणों के माध्यम से जुड़े हैं। तो बाबा कहते हैं इस कंबाइंड स्वरूप जैसा शक्तिशाली स्वरूप संसार में और कोई नहीं होता। जहां दो बिगेस्ट हस्तियां, सबसे बड़ी हस्तियां जुड़ गई, एक साथ हो गई, इस शक्तिशाली स्वरूप के आगे संसार की सभी शक्तियों को परास्त होना पड़ता है। मायावी शक्तियां, आसुरी शक्तियां, तंत्र मंत्र की शक्तियां, भूत प्रेत की शक्तियां, विज्ञान की शक्तियां, सभी शक्तियों को इस कंबाइंड स्वरूप की शक्ति के आगे समर्पित करना पड़ेगा। ये इतना शक्तिशाली स्वरूप है, इसलिए हम अपने अभ्यास में इस अनुभव को बहुत बढ़ाएं, सर्वशक्तिवान के स्वरूप को विजुअलाइज करें, उसको देखें अपनी बुद्धि से, और ये अनुभव करें कि उससे सर्वशक्तियों की किरणें एक फाउंटेन के रूप में मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर उतर रही हैं। मैं आत्मा समाती जा रही हूं सर्वशक्तियों को, इस कंबाइंड स्वरूप में हम स्थित होते चलें। इस तरह हम अभ्यास के द्वारा अपने जीवन को योग युक्त बना सकते हैं। फिर से याद दिला दें, लक्ष्य की जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही, जहां हिम्मत है वहां सफलता है। इसलिए अगर आपका योग नहीं लग रहा है, आपको योग में सफलता नहीं हो रही है, आप निराश न हो, कम से कम 15 दिन तक अभ्यास करते चलें, अभ्यास करते चलें। कुछ बातों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अभ्यास करते करते बुद्धि की स्थिरता बढ़ जाएगी और जीवन योग युक्त होता जाएगा। योग अभ्यास से जीवन में सर्व शक्तियां बढ़ती हुई अनुभव होंगी। ओम शांति।